शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे, सत्यम शिवम सुंदरम शिवम सुंदरम। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, ओ योगी तुम महायोगी तुम, ओ आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांति वीर तुम, सखा वीर तुम महावीर तुम, शक्ति वीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओ राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी।
शायद ये अरस्तु के लिए कहा गया है, एरिस्टोटल, कि वो एक बार समुद्र के तट पर घूम रहा था और उसने एक अचंभित करने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि एक व्यक्ति एक चम्मच से समुद्र की तरफ भाग रहा है, समुद्र का पानी उस चम्मच में भर रहा है और भागकर समुद्र के किनारे पर एक छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में वो पानी डाल रहा है, भाग रहा है समुद्र से, पानी चम्मच में ले रहा है और चम्मच को लेकर वापस तट पर लौटकर उस गड्ढे में डाल रहा है। अरस्तु को आश्चर्य लगा, ये क्या है। उसने सोचा ये आदमी पागल हो गया है। उसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने संकल्प किया है कि समुद्र का सारा जल इस गड्ढे में डाल दूं। अरस्तु, महान विचारक, मनीषी, कहता है, अरे मूर्ख, तुम सारे जीवन भर भी ये करते रहो तो भी इतने विशाल महासागर को कभी भी इस गड्ढे में नहीं डाल सकोगे। वो व्यक्ति कहता है, अगर मैं पागल हूं तो तुम कौन हो। जो सत्य परम है, जो इटर्नल ट्रुथ है, उस परम सत्य को तुम अपनी इस इतनी छोटी बुद्धि में डालने की कोशिश कर रहे हो, कब से महान ज्ञानियों में गिने जाते हो, पर कर क्या रहे हो। जो परम सत्य है वो तो समंदर के समान है, सागर के समान है, उसको तुम अपनी इस बुद्धि से कैसे जानोगे। और परम सत्य को लालच से जाना भी नहीं जा सकता है। परम सत्य के पीछे जो जितने ज्यादा पड़ते हैं उनसे परम सत्य और दूर भागता है। सत्य के लिए पात्रता चाहिए, सत्य के लिए स्वीकार करने का भाव चाहिए। सत्य तभी अवतरित होता है जब हम तैयार हो। बुद्धि स्वच्छ हो और सज्ज हो, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। स्वयं के विषय का सत्य, ईश्वर के विषय का सत्य, जगत के विषय का सत्य, जीव जगत ईश्वर, जगत में हो रही है जो घटनाएं हैं उनका सत्य, ये घटनाएं क्यों हो रही है, मेरे साथ जो कुछ हुआ बचपन से अब तक वो क्यों हुआ, यहीं पर जन्म क्यों लिया, यही सब कुछ क्यों हुआ, ये जो कुछ हुआ है, अगर इन सब को समझना है, घटनाओं को समझना है, तो विनम्रता का भाव और स्वीकार्य भाव, परम सत्य विराट में प्रकट होता है। फिर वो सागर छोटा जलाशय बन जाएगा और बुद्धि सागर बन जाएगी, जिसमें वो सागर समा जाएगा हदों से पार, विराट, बृहद, अनलिमिटेड। आज की सारी मुरली एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है, कौन सा? बेहद, बेहद स्वरूप, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर, पहला और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? बेहद, बेहद, बेहद। बाबा को यह शब्द बहुत प्रिय है, उसका फेवरेट शब्द है। असीम शब्द का प्रयोग नहीं किया है उसने, विराट शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जहां कंट्रास्ट है। ये हद, ये बेहद, हद की सीमाएं जहां समाप्त होती है, बेहद वहीं से शुरू होता है। बेहद का पाप, बेहद की बुद्धि, बेहद के बच्चे, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद का घर, बेहद का स्थान, बेहद के सेवाधारी, बेहद की का मेरा, बेहद का मेरा, बेहद की माता है, तो सब बेहद, बेहद, बेहद। तो आज की मुरली से ढूंढो बेहद कहाँ कहाँ आया है, किस संदर्भ में आया है, कितनी बार आया है, ढूंढना है। अभी नहीं ढूंढो, बाद में ढूंढना। बेहद, और उसके अर्थ को समझना है। जब बेहद बुद्धि बाबा कह रहे हैं तो अर्थात क्या, बेहद वृत्ति अर्थात क्या, बेहद दृष्टि अर्थात क्या, वो कौन सी दृष्टि है जो सब देख ले एक थक से, टुकड़े टुकड़ों में ना देखे, किश्तों किश्तों में ना देखे, इंस्टॉलमेंट में ना देखे, होलसेल, एक धक से सारे सृष्टि को देख ले, एक धक से अपने सारे जीवन को देख ले, एक धक से अपने सारे अमृत वेले को देख ले, एक धक से अपने योग की स्थिति को देख ले, एक धक से अपने ब्रह्मचर्य को देख ले, एक धक से अपने सारे जीवन के सर्व संबंधों को देख ले, और उसमें से कौन सा व्यर्थ है और कौन सा अनुपयोगी है, उसको उखाड़ कर बाहर फेंक दे। कौन सा संकल्प, कौन सी दृष्टि और कौन सी वृत्ति अनवांटेड है, उसको उठा के बाहर फेंकना है। कौन सा कर्म अनवांटेड है, उसको उखाड़ के बाहर फेंकना है। फेंको, अभी उठाओ, अच्छे से उठाना और फेंक दो। दूर फेंकना, नहीं तो फिर आ जाएगा। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद का वैराग्य, बेहद का सन्यास, सब कुछ बेहद का। एक धक से देखे जो समग्र को देख ले, इंटीग्रेटेड, अनडिवाइडेड, होल को देख ले, टुकड़े टुकड़े नहीं, पार्ट्स पार्ट्स नहीं, पुर्जे पुर्जे नहीं, सब एक विहंगम दृष्टि। ऊपर से दिखाई देखते हैं ना तो अच्छा दिखाई देता है सब कुछ, वहीं घूमते रहो तो पता नहीं चलता है। तो क्या किया जाए जिससे बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की सेवाधारी, बेहद की स्थिति बन जाए आज की मुरली से? क्या क्या किया जाए? देह की हद से परे चले जाए, क्या किया जाए उसके लिए? मुरलियों में ये लिखा रहता है कि ये करो, कैसे करो ये नहीं है उसमें। ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, फॉलो फादर करो, पवित्र बनो, याद करो बाप को, आत्माभिमानी बनो, फरिश्ता बनो, फॉलो फादर, नंबर वन बनो, नंबर वार नहीं, परंतु कैसे, बेहद के वैरागी बनो, बेहद का संन्यास लो, कैसे साक्षी बनो, कैसे फरिश्ता बनो, कैसे कर्मातीत बनो, कैसे, यही तो है, कैसे 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 ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, पूछो तो दिया जाएगा। खोज तो जारी हो तब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। खोज आध्यात्मिक यात्रा का राही बनना है, खोजी बनना है, अन्वेषक बनना है, इस यात्रा का पथिक जो ढूंढे सत्य को। पहले तो ये स्वीकार करना होगा कि सत्य मैंने नहीं जाना, पहले ही मान लिया कि मैंने सब कुछ जान लिया है तो ज्ञान के सारे किवाड़ बंद हो जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। सितारों से आगे जहां और भी है। There are many things in heaven and hell, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Shakespeare का एक पात्र Hamlet अपने साथी Horatio से कहता है कि Horatio सुनो, तुम अभी नहीं समझे हो, तुम्हें अभी पता ही नहीं। There are many things, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी in heaven and hell, इस दुनिया में और उस दुनिया में। Then I dreamt of in your philosophy, जो तुम सोचते हो, Horatio बहुत फिलोसोफर है, तर्क ज्ञानी, तत्वज्ञ है, बहुत समझता है, स्ट्रेटेजिस्ट है, पर उसका बॉस उससे कहता है कि तुम जो कुछ सोचते हो उससे परे भी एक दुनिया है, स्पिरिट की दुनिया, जो देह से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, उससे परे भी एक संसार है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो भी एक संसार है जिसके विषय में तुम कुछ भी नहीं जानते। अभी इतनी किताबें हैं सारी संसार में, कितनी किताबें हैं, हजारों किताबें, लाखों करोड़ों किताबें हैं, प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस। क्या है ये सब किताबें, अज्ञान का परिणाम। आई रही है नई नई किताबें, क्या उसमें ज्ञान है? ज्ञान किताबों में कैसे हो सकता है? ज्ञान तो प्रतीति है, ज्ञान अनुभव है। तो आज की मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? बेहद स्वरूप, तुम्हारा अभी का स्वरूप, ब्राह्मण का स्वरूप, जो मर्जी व जन्म है उसमें हदों से पार चले गए शरीर के, तब ब्राह्मण बने। तुम्हारा जो अंतिम स्वरूप है फरिश्ता, उसमें रिश्तों से ऊपर चले गए, और जब तक आत्मा इस जीवन के सारे रिश्तों से परे नहीं निकल जाती, उसे दिखाई नहीं देगा कुछ भी। सब कुछ देखना है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऊंचाई गहराई लंबाई चौड़ाई चेतना की। तो कुछ और चाहिए, तो आज दो भागे मुरली के, एक तो ये बेहद वाला और दूसरा माताओं वाला, साथ टाइटल दिए गोपाल की माताएं, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा माता गुरु का सिलसिला अभी चालू हुआ। इस ज्ञान की नवीनता है कि माताओं को बहनों को आगे रखा गया है, ये ज्ञान की क्या है, नवीनता। इस ज्ञान की 21 नवीनताएं बताओ यशोदा बहन, ज्ञान की नवीनता क्या क्या है? सुखदेव भाई पवित्रता ही न्यू नोवेल्टी है, मुरलियों में आया है ना, सबसे बड़ी नवीनता कौन सी है, प्यूरिटी ही नोवेल्टी है, ऐसी प्यूरिटी संसार में कहीं है ही नहीं। पवित्रता नवीनता है, प्यूरिटी इज नोवेल्टी। माताओं को आगे रखना ये नोवेल्टी, इट्स न्यूनेस। दो हो गए, ज्ञान की नवीनता है, ये ज्ञान सबके लिए है, हर देश के लिए, हर भाषा वाले के लिए नवीनता। नवीनता क्या है? इस ज्ञान में सारे शास्त्र का सार समाया हुआ है। और त्रिकालदर्शी क्या बनाता है, वो नहीं, इस ज्ञान की नवीनता क्या है वो बताना है। इस पर आज चिंतन करो, क्या नवीनता है, और वो कोई लंबा वाक्य ना हो, एक शब्द हो बस, छोटा सा शब्द हो या दो शब्द हो, ये जैसे बेहद का है। सब परिवर्तन, ये सब स्लोगन्स है, ये नहीं चाहिए उत्तर। आत्म अभिमानी बनना, ये ज्ञान की नवीनता है। संसार में भक्ति करते हैं लेकिन, परंतु आत्मा समझते हैं क्या? नहीं। परिवर्तन ज्ञान की नवीनता है, क्रांति इस ज्ञान की नवीनता है, देही अभिमानी बनना ज्ञान की नवीनता है, याद की यात्रा इस ज्ञान की नवीनता है, राजयोग इस ज्ञान की नवीनता है, कर्मयोग इस ज्ञान की नवीनता है, धारणा इस ज्ञान की नवीनता है, मर्यादा इस ज्ञान की नवीनता है, महसूसता की शक्ति, शक्तिशाली बनना इस ज्ञान की नवीनता, अष्ट शक्तिधारी बनना, अनुभव की ऑथोरिटी बनना, यह ज्ञान की नवीनता है। बेहद का वैराग इस ज्ञान की नवीनता है। तो इस ज्ञान में क्या नवीन है, इसका चिंतन करना है। माता, गुरु, गुरुमुख, अनुभवी मूर्त, कुमारिया तो क्या हो सकती है, धोखा खा सकती है, पर माताएं, माताओं ने बहुत चक्की पीसी है, सारे अनुभव देख लिए, सबके देखे, बहन के, माता के, उसकी माता के, सास के, ससुर के, बहू के, ननद के, हाँ, घाट घाट का सारा पानी देख लिया, पी लिया है। सामने कोई आता है और कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो माता पहचान सकती है क्या है, सच बोल रहा है या ऐसे ही है झूठ। जिसने किसने कितना धारण किया है उसके ऊपर। तो बाबा ने क्या कहा, माताएं क्या है, अनुभवी मूर्त, माताएं क्या है, गौमुख, माताएं क्या है, माताओं को क्या कहा, वंदे मातरम, माताएं कौन है, जगत कल्याणी, विश्व कल्याणी, घर की कल्याणी नहीं, एक घर के लिए नहीं है वो, विश्व के लिए है, जगत के लिए है, जगन माता है, जगत कल्याण के लिए आई है। तो भोली भोली माताओं को बाबा ने इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल दिया, भगवान क्या करता है, वंदे मातरम। तो ये माताओं के लिए कहा है, शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति बना दिया उनको। संसार में इतने स्क्रिप्चर्स लिखे, शास्त्र लिखे, उसमें पुरुषों के संन्यास के विषय की कितनी सारी चर्चा है, इतने सारे आश्रम है, मठ है, अखाड़े हैं, सब में ये सारी चर्चा है, पर कहीं पर भी स्त्रियों का वैराग, संन्यास, इसकी चर्चा है बहुत कम है, ना के बराबर। संसार में आश्रम होते हैं, अखाड़े होते हैं और मठ, ये तीन होते हैं, एक आश्रम, एक अखाड़ा, एक मठ। यहां क्या है, बाबा ने इन तीनों में से एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना अखाड़ा, अखाड़ा कहा है क्या इसको, ना मठ कहा है, ना आश्रम कहा है। हाँ, हम लोग कहते हैं बोलते समय कभी कभी कभी, नॉर्थ वाले लोग ये कहते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम, परंतु बाबा ने आश्रम शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना अखाड़ा, ना मठ, क्या शब्द कहा, सेवा केंद्र, सेवा केंद्र कहा, मिनी मधुबन कहा, गीता पाठशाला कहा, यज्ञ कुंड, शांति कुंड, अलग अलग इस तरह के शब्द प्रयोग किए, वो टाइप के शब्द प्रयोग नहीं किए। तो आज का दूसरा काम, पहला काम तो बताया, इस मुरली से बेहद शब्द कहाँ कहाँ आया है, वो सारे शब्द निकालने हैं, उस फ्रेज उस वाक्य सहित, जैसे बेहद का बाप, बेहद बुद्धि, बेहद स्वरूप, बेहद के मेरे, बेहद स्थिति, बेहद वृत्ति, बेहद घर, बेहद का स्थान, बेहद के सेवाधारी, बेहद की माताएं, बेहद के मेरे, बेहद की माताएं। तो ये सारे जितने बेहद आए हैं, वो सारे बेहद एक जगह लिखना है, ये पहला काम आज की मुरली से। दूसरा काम कोलैज, एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें ये सातों बातें आ जाए। ये बनाया है इधर, ये क्या बनाया है पता नहीं चल रहा है। एक ही चित्र में सारे आ जाने चाहिए, जिसमें माता गुरु आएगा, गुरु गौमुख आएगा, जिसमें विश्व बेहद माता आएगा, जिसमें वंदे मातरम भी आ जाएगा, जिसमें अनुभवी मूर्त भी आ जाएगा, बेहद विश्व कल्याणकारी, जगत कल्याणकारी भी आ जाएगा, गोपाल की माता है, ये सारे शब्द आ जाएंगे। जब हम मुरली के टेक्स्ट का चित्र बनाते हैं, तो बनाते समय वो हमारे मन में अंदर स्थान कर जाता है। चित्र देखते समय तो होता है, पर बनाते समय हम खुद जब बना रहे हैं कोई चित्र, कोई टेक्स्ट है फरिश्ता, पर उस फरिश्ते का जब हम चित्र बना रहे हैं, तो वो चित्र अंतर्मन में समा जाता है। शब्द अंतर्मन में नहीं जाते, चित्र अंतर्मन में जाता है, कहानी अंतर्मन में जाती है, फन एंटरटेनमेंट अंतर्मन में जाता है, शॉक वाली कोई इवेंट हो, चीज हो, वो अंतर्मन में घुस जाती है, जिसको बार बार रिपीट किया गया है वो अंतर्मन में समाया जाता है, जो शांत योग की अवस्था में संकल्प किए जाते हैं वो अंतर्मन में समाए जाते हैं, जो प्रकृति के सानिध्य में बैठकर सोचे जाते हैं वो अंतर्मन में समाए जाते हैं। कोई क्लास चल रही है और उस क्लास में हम बैठे हैं, परंतु संपूर्ण समर्पण भाव से बैठे, तो अचानक कोई एक बात ऐसी निकलेगी जो भीतर समा जाएगी, डीप अंतर्मन में। और जो अहंकार से बैठता है, गलतियां निकालने के लिए बैठता है, तब अंतर नहीं जाएगा। छोटे बच्चे या छोटी कुमारी या कन्याएं या संसार में भी जो महान सन्यासी बने बाद में, ऐसे छोटे छोटे बच्चे पहली बार जब एंट्री किया उन्होंने किसी आश्रम में, किसी मठ में, देखा एक मठ है, एक आश्रम है, कुछ भी नहीं है वहां पर कुछ सन्यासी बैठे हुए हैं, युवा सन्यासी तप कर रहे हैं, उनसे बातें की, रोज वो जाने लगा, वो अंतर मन में उनका वैराग समा गया। उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, उस बच्चे ने कुछ किताब नहीं पढ़ी, पर केवल उनको देखकर ही उसे लगा कि मुझे भी ऐसा ऑल रिनाउंसिंग मंक, ऐसा सर्वस्व त्यागी बनना है। कितनी तपस्या है इनके जीवन में, यहां कुछ भी नहीं है फिर भी यहां का एटमॉस्फियर स्पिरिचुअली चार्ज्ड है, ऐसा अनुभव और धधकता वैराग जागा विदर। कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार का, कुछ भी नहीं, यहां बंधन ही बंधन है केवल। ये बंधन अगर संसार के आत्माओं का कल्याण करना है, तो हमें उनमें से एक नहीं बनना पड़ेगा, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। वो जिन बंधनों में बंधे हैं, फंसे हैं, उससे बाहर रहकर ही उनका कल्याण किया जा सकता है, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे उसी में, उसी दलदल में। पहले तो खुद को बाहर निकालना है। तो ये बाबा ने माताओं से बात की, और क्या क्या कहा इस मुरली में, डालिया कर्म, चाहे कितना भी अच्छा हो, पर वो क्या है, बांधता है। बुरा कर्म तो बांधता ही, पर अच्छा भी क्या करता है, बांधता है। मैंने किया, प्रशंसा मिलती है, स्तुति होती है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो वो स्तुति क्या करती है आत्मा को, बहुत खुशी दिलाती है, अच्छा लगता है, गुदगुदी होती है, बंधन निर्माण करता है। मैं निर्बंधन हूं, कर्म का कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी कर्म है वो हो रहे, मैं डिटैच्ड हूं, जीवन मुक्त हूं, कर्मातीत हूं। कर्म और कर्म का परिणाम, ये तो खेल चल रहा है इस सृष्टि मंच पर सारा कर्मों का। कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा, वो सारा हो रहा है। परंतु मैं इन सब से अभिन्न हूं, सबसे डिटैच्ड हूं, निरंतर यही भाव। मैं आत्मा निर्लेप हूं, अनटच्ड। आत्मा है नहीं परंतु ये समान है, अपरिवर्तनशील हूं। मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं करता, कुछ भी टच नहीं करता, ना कोई माँ ना कोई बाप ना कोई भाई ना कोई बहन। मैं सबसे डिटैच्ड हूं, ना कर्म ना कर्म का परिणाम, सबसे डिटैच्ड हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं, ना कोई मेरा मित्र है ना कोई मेरा साथी है ना कोई संगी ना कोई संबंध। मैं इन सबसे डिटैच्ड हूं, सबसे अलग हूं। न बंधन न मुक्ति न मोक्ष, कुछ भी नहीं, मैं सबसे डिटैच्ड हूं, सब सबसे डिटैच्ड। मैं पवित्र बनना है मुझे, नहीं मैं हूं ही। ये बनना है भी क्या करता है, बेचैनी उत्पन्न करता है कि कुछ करना है, मतलब बोझ, ये करो वो करो ऐसा करो। मैं हूं ही, करना कुछ भी नहीं है, बस जानना है कि मैं हूं, आई एम। जो भी समान जितने हैं, एक वो अभ्यास है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं समान की, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं। एक वो है कि जिसको हमने मान लिया कि मैं निरंतर ही पवित्र हूं, जिस जब जब से जन्म लिया तब से अब तक मैं प्योर ही हूं, और ये जो कुछ हुआ जीवन में वो सब मैं नहीं हूं, वो कोई दूसरे पे डाल दो। ये जो पाप विप जो हुए ना, जो पाप और विकर्म, इसका तो बोझ कितना है। मैं मेरे से पाप हो गया, 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 दूसरे ने नहीं, ये सब मैं था ही नहीं। मैं न मन न बुद्धि न संस्कार, ये सब अलग, ये सब, ये मैं हूं ही नहीं। मराठी में एक नाटक है, तोम ही नवेच। वो एक व्यक्ति होता है, वो किसी को फंसाता है, फिर दूसरी जगह जाता है दूसरा रूप धारण करता है, फिर दूसरे को फंसाता है, फिर तीसरी जगह जाता है कुछ दूसरा रूप धारण करता है, कभी साधु बनता है कभी कुछ बनता है, कभी कितनी जगह जाता है सबको फंसाता है, और कोर्ट में उसको खड़ा करते हैं, और वो उसके सामने लोगों को खड़ा करते हैं कि ये देखो इसको तुमने फंसाया। वो बोलते हैं इसको तो मैं जानता ही नहीं, तुम ही नवेश, मैं ये हुई नहीं। फिर दूसरे को खड़ा करते, इस परिवार को तुमने फंसाया। वो बोलते तुम ही नवेश, मैं ये हुई नहीं। फिर तुमको इस आदमी को तुमने फंसाया, तुमने इसके पैसे लेके भाग गए, इससे शादी की और उसके पैसे लेके भाग गए। वो कहते मैं हूं ही नहीं। तो यहां पर भी ऐसा ही, बाबा ने कहा ये संस्कार किसके, तुम्हारे है क्या, रावण के है, तुमने अपना क्यों बनाया, मैं हूं ही नहीं। ये पाप जो किए ना, ये मेरे है ही नहीं, मैं तो प्योर ही हूं, जब से जन्म लिया तब से मैं ही पवित्र ही हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, एकदम प्योर, हमेशा ही प्योर। ये जो हुआ और गया ना, ये पता नहीं कौन था, ये मेरा है ही नहीं, ना मैं हूं ना मेरा, सब बाजू में। मैं करता हूं, मैं अभोगता हूं, ना मैं कुछ कर रहा हूं ना मैं कुछ भोग रहा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं तटस्थ हूं कुटस्थ हूं, मैं अद्वय हूं अविनाशी हूं अभेद्य हूं अविभाज्य हूं इंडिविजिबल हूं, ना मेरी मृत्यु ना मेरा कोई जन्म है, एक्टिविटी, ना मेरा जन्म है ना मृत्यु, कौन सा बर्थडे सेलिब्रेशन करें, ना कोई जन्म ले रहा है ना कोई मर रहा है, सृष्टि में ये खेल चल रहा है। आत्मा उतनी थी ना, 100 आत्माएं थी, 100 आत्माएं नीचे आई, 5000 साल का खेल पूरा, और लास्ट में 100 ही बची है। अब बीच में कोई माँ बाप बहन बेटी ये मर गया वो मर गया, अब क्या किस किस के लिए रोऊं? यहां जहां हम अभी है बैठे, यहां हम जहां बैठे, आप जहां बैठे, उसके नीचे कितनी चिताएं जली होगी बताओ, द्वापर से अब तक कितनी लाशें नीचे हो, कितनी लाशों के ऊपर बैठे हो। ये तो खेल चल रहा है, मैं हुई नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूं, परम पवित्र हूं, मैं शक्तिशाली हूं, शक्ति तो मेरा स्वरूप ही है, कहीं से लानी नहीं है मुझे, ज्ञान मेरे अंदर ही है, कहां से पढ़ू, कहां से लाऊं? Religion is the manifestation of divinity already in man. Education is the manifestation of perfection already in man. Education क्या है? जो perfection पहले से ही है, पूर्णता, कहीं से लाना नहीं है, उसको बस उघाड़ना है, उसको बस उभारना, बाहर भीतर अंदर से कचरा झाड़ना है बस, सोना तो है ही, मिट्टी है, खटाओ, सोना कहीं से लाना थोड़ी ना है। उसी तरह आत्मा शुद्ध ही है, पवित्र ही है, बस ये बीच में ये सारा मल विक्षेप आवरण हो गया है, ये इधर से विकर्म, ये विकर्म, ये पाप वो पाप सब हटाओ, और अब उसके पश्चाताप भी मत करते बैठो उसके ऊपर, सारा जीवन पश्चाताप में ही गुजर रहा है, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, अरे तुमसे बड़े बड़े पापी इधर बैठे हैं क्या पाप किया तुमने, हमने बाहर का कचोरी खा ली, अरे हटाओ भागो यहां से।
ओम शांति। तो आज की एक्टिविटी का नाम है स्पिरिचुअल शॉपिंग मॉल, जो कल भाई जी ने भी क्लास में कहा था। तो मुरली के आधार से आपको कुछ प्रॉप्स दिए जाएंगे, ज़्यादा हैं लोग तो फिर 10-15 लोग का एक ग्रुप बना सकते हैं, और आपको जो भी प्रॉप दिया जाएगा तो मुरली में वो शब्द आए हैं, और उसमें प्यारे बाबा ने जो भी उन शब्दों के लिए या जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा उसके लिए जो भी कहा है उसको यूज़ करके बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ, रमणीकता के साथ एक सुंदर प्रस्तुति बनाएंगे, एक एडवर्टाइजमेंट छोटा सा बनाएंगे कि आपको वो ऑब्जेक्ट दिया गया है और आप सभी शॉपकीपर्स हैं, तो कैसे उसको बेच सकते हैं सामने वाले को, कैसे उसको आप कन्विंस करेंगे कि वो आपका प्रोडक्ट जो है ले, मार्केटिंग करनी है ना। तो अभी आपको ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उससे पहले एक सैंपल आपके सामने दिखाते हैं
अरे बहन ठीक से चलो, दिखाई नहीं देता क्या?
हाँ बहन, मुझे दिखाई नहीं देता इस साकारी दुनिया की कोई भी वस्तु, क्योंकि मैंने लगाया है बेहद की दृष्टि का यह चश्मा।
बेहद की दृष्टि का चश्मा, वो क्या है?
हाँ, ये है बेहद दृष्टि का चश्मा, इससे हर एक आत्मा दिखाई देती है, हर एक फरिश्ता स्वरूप दिखाई देता है, और इस साकारी दुनिया की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, हर एक के अंदर इसको पहनने से गुण और विशेषता दिखाई देती है। तो आप सभी इसको अपने नजदीकी सेवा केंद्र से जरूर प्राप्त करें, इसको आप पहन भी सकते हैं टिंग टोंग हर एक की पसंद यही, चाहे बाबा है या मम्मा, तो जरूर पहनिए बेहद दृष्टि का ये चश्मा,
सस्ता टिकाऊ
ठीक है। तो अभी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चिट भी लगाया हुआ है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो पास कर देंगे। 6 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो 6 ग्रुप्स बना सकते डिपार्टमेंट्स
माना इसको बेच के
ग्रुप है? ग्रुप बना सकते हैं सभी, बेचना ये भी एक वो आप इतना ही है खत्म, थोड़ा सा अच्छा हाँ एक और वैसे तो मुरली में जो शब्द आए हैं उनके उनको यूज करके बनाया हुआ है, बट आप अपने ज्ञान के आधार से भी चीजें ऐड कर सकते हैं, आपको क्रिएटिव लिबर्टी है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देंगे सभी ग्रुप्स को। टू मिनट्स। किसी किसी का रेडी हो गया है तो वो शेयर कर सकते हैं।
ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बेहद का कल्प वृक्ष है, इसको अगर हम पलट दे तो ये बीज है और ये सारा झाड़ है। एक एक हमारा जो संकल्प है वो हर आत्मा तक इस तरीके से पहुंचता है। हमारे हर श्रेष्ठ संकल्प सभी आत्माओं तक पहुंचता है, तो इसलिए ये खरीदने से आपके सभी संकल्प, सभी श्रेष्ठ संकल्प पूरे होंगे।
तो इस झाड़ के नीचे बैठेंगे तो सब संकल्प पूरे,
और इससे बेहद की खुशियां आ जाएंगी। तो ये लकी वृक्ष हैं, जब बेहद की खुशियां पाने के लिए लीजिए बेहद का कल्प वृक्ष।
लेकिन मैंने पहले लिया था, मुझे घाटा पड़ा था इसका। मैंने पहले वृक्ष लिया था, ऐसा मुझे घाटा पड़ा था।
इसको इस वृक्ष को सुबह सुबह देखने से पूरा दिन बहुत अच्छा आ जाता है।
और आप में
इसको लीजिए,
इसका फ्री में देंगे
डिस्काउंट 2%।
पाइए बेहद का आनंद, बेहद की खुशियां, बेहद का सुख, बेहद का प्रेम सब मिलेगा इस बेहद के कल्प के साथ।
आपकी दृष्टि इस वृक्ष को देखते हैं सब कुछ बदल जाएगी। दृष्टि, वृत्ति, हमारा सोचना, बोलना, सब कुछ चेंज हो, परिवर्तन हो जाएगा।
ये उड़ता पंछी, ये उड़ता पंछी माने बेहद, पिंजरे का पंछी मतलब बहुत, सब ये उड़ता पंछी। अच्छा, ले लो उड़ता पंछी ले लो, आप सभी हद से पार बेहद में चले जाएंगे, बाबा को पकड़ लेंगे। फायदा मैंने उड़ते रहेंगे, सब मुक्त गगन में रहेंगे, और क्या करेंगे। हाँ, बंधन में नहीं आएंगे, सबको बंधन मुक्त कर देंगे। मरना तो है ही, शरीर तो छोड़ना है, अब ले लो कुछ। मिलके आपको क्या खुशी हुआ?
सभी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसा पंछी, इसको खरीदेंगे तो सभी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी मन का कोई भी बंधन जो है, अब इस पंछी को अगर आप देखेंगे कि ये उड़ता पंछी है, ये बंधन वाला पंछी पिंजड़े वाला नहीं है, तो इसको खरीदेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप एक किसी भी मन बुद्धि संस्कार किसी भी बंधन से मुक्त हैं। तो ये इसके लिए आपको सिर्फ अपने मन का भाव वो सिर्फ अर्पित कर लो।
जल्दी लो, फटाफट बोलो। मैं बेहद का पंछी हूँ, बेहद में उड़ने वाला हूँ, हद से परे। इसको लेने से हद से परे हो जाओगे, बेहद में चले जाओगे।
ओके,
ये है रूहानी ताज। इस ताज को पहनने से आपके शरीर की सुंदरता बढ़ेगी, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। ये तन की भी सुंदरता को बढ़ाएगा, मन की भी सुंदरता को बढ़ाएगा। इसमें जो हीरे लगे हुए हैं वो हीरे जैसे नवरत्नों की अंगूठी पहनते लोग, तो ये बहुत लकी हीरे हैं। आपको बड़े बड़े ताज मिलेंगे, पॉलिटिक्स में बड़ी कुर्सियाँ मिलेंगी, जहाँ पे भी जाएंगे वो हीरे आपको लकी साबित होंगे। नवरत्न इसमें लगे हुए हैं, इसमें नवरत्न लगे हुए हैं आपको, आप इसमें नवरत्न लगे हुए हैं। ये सारे लकी हीरे हैं, ये सारा शास्त्रों के आधार पे बनाया गया है। तो आपको ये बहुत ही कम पैसे में हम आपको दे रहे हैं, बाहर आपसे बहुत पैसे लिए जाएंगे। इससे आपको तन भी सुंदर होगा, मन भी सुंदर होगा। आप इस ताज को पहने और आप इसको ज़रूर ले, ये रूहानी ताज है। ये आपकी मन की सुंदरता को बहुत बढ़ाएगा, आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा। और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसके हीरे कितने सुंदर हैं, इसका लुक कितना सुंदर है, जैसे ही आप लगाएंगे जैसे ही आप लगाएंगे तो आप जैसे ही अपने सिर पे पहनेंगे तो ये आपकी तन की सुंदरता को बहुत बहुत बड़ा बढ़ा देगा। ये भविष्य में आपको विश्व महाराजा महाराजन बनाएगा और वर्तमान में आपको बहुत ही सुंदर बनाएगा। एक और ये लास्ट पीस है, जितनी जल्दी आप लेंगे इसकी बुकिंग फुल हो जाएगी और बहुत स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर, तो आप जल्दी से जल्दी इसको बुक कीजिए। और ये लिमिटेड ऑफर है, अगर आप 5 मिनट में इसको बुक करेंगे ना तो आपको 90% डिस्काउंट मिल जाएगा बस। इसलिए जल्द से जल्द आप इसको बुक कर दीजिए। ओम शांति।
ओके नेक्स्ट ग्रुप पीछे।
ये बेहद का रूहानी सेवादारी का ताज है।
ताज तो हो गया, अभी नेक्स्ट
बेज है, रूहानी सेवादारी का बेज है। रूहानी सेवादारी बना है तो यही बेज लेना पड़ेगा।
बेहद का सेवादारी है वो पीछे टैग।
रूहानी सेवादारी बना है तो ये बेहद का सेवादारी का ताज लेना पड़ेगा।
और कोई ऐड कर सकते हैं?
ये बेहद सेवाधारी का ताज है, बैज है, ये बेहद सेवाधारी का बैज है। जो भी इसको खरीदेगा ये बेहद में उड़ेगा, इसको तुरंत ही भगवान से मिलन हो जाएगा और इसके साथ सदैव भगवान रहेंगे। जिसके साथ परमात्मा रहता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो आप बेज को जरूर खरीदें, ये बहुत वैल्यूएबल बेज है, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ ही ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मिल सकता है।
ओम शांति। ये बेज हमारा पहचान है, हम कहीं भी जाते आते हैं तो ये पहचान जाते हैं, दुनिया वाले पहचान जाते हैं कि ये बीके हैं, भगवान के बच्चे हैं, दयालु हैं, ऐसे समझ जाते हैं हम सब।
ओके नेक्स्ट।
ये बैज लगा के हम बाबा के साथ कंबाइन हो जाते हैं, निर्विघ्न हो जाते हैं।
पीछे माइक दे दीजिए।
ओम शांति। ये देख लो हमारा अंतिम स्वरूप है, शास्त्रों का सार, इस क्लास का सार, सब का सार यही है। अंत में हमको यही अंतिम स्वरूप हमारा यही बनाना है, फरिश्ता स्वरूप। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर हमारी ये अवस्था होगी हम तुरंत ही फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए यहाँ सभी अपने को फरिश्ता स्वरूप समझे, 2 मिनट के लिए फरिश्ता स्वरूप में बैठ जाइए। मार्केटिंग। अच्छा, इस फरिश्ता स्वरूप कौन लेना चाहता है? जो भी लेना चाहता है हाथ ऑप्शन सबको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फरिश्ता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, एक बाप को याद करना पड़ेगा। इसके लिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप को हमेशा याद रखो, अमृत वेले से फरिश्ता स्वरूप याद रखेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे।
ओम शांति। ये फरिश्ता स्वरूप बनने से मुझे जितने भी संबंधी हैं, जो भी हमारे लौकिक में हैं, उनसे सबसे डिटैच होने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल लाइट स्वरूप, इसे हम आसानी से बाबा से मिलन मनाने के लिए उठ सकते हैं। तो एकदम बिल्कुल लाइट स्वरूप में खुद को देखना, बिल्कुल सब जैसे नीचे बैठ जाता पानी में, बिल्कुल ऊपर उड़ते रहना है हवा में एकदम से। तो इससे मुझे बिल्कुल लाइट रहने में मदद मिलेगी, जिससे जितने लाइट होंगे उतने ही बाबा के पास। ओम शांति।
ओम शांति। ग्लोब है।
ओम शांति। ये बेहद का है विश्व ग्लोब, सारा ग्रुप है, एक श्री पकड़। ये है बेहद का विश्व ग्लोब और एक श्री यंत्र है जो मधुबन बेहद के घर से चार धाम की यात्रा करके आया हुआ है और विशेष इसमें पावर्स भरी हुई है। अगर आप इसे लेते हैं तो आपके जीवन के सभी सारे कष्ट, सारे दुख दर्द, सारी विपत्ति विपदा बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी। तो देर ना करें, तुरंत करिए। हम इसका एक डेमो भी दिखा सकते हैं आपस। तो ये ग्लोब अभी एक एक के पास आएगा, आप फील करेंगे अभी कि कैसे हमारे जो है जीवन के सारे विघ्न इससे खत्म हो सकते हैं। तो एक संकल्प करेंगे, एक एक ग्लोब आपके पास उड़ के आने वाला है और इसका प्रयोग कर सकते हैं बहुत सुंदर, कि रोज रात को सोते समय अमृत वेले जब भी आप करेंगे संकल्प, तो देखिए इस ग्लोब में, ग्लोब के द्वारा जो है सारे विश्व में ये जाएगा और सारे विश्व से आपको दुआएं मिलेंगी। तो इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है, इसलिए कुछ भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल ये ही जो है आपका, केवल ये आखिरी पीस बचा हुआ है, आखिरी पीस ही है। और कहीं और क्योंकि ये चार धाम की यात्रा भी करके आए तो विशेष ब्लेसिंग शक्तियां इसमें भरी हुई हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो अभी महाकुंभ से आया हुआ है, पूरी दुनिया घूम सकते हैं कि यात्रा है, संकल्प की श्रेष्ठ प्राप्ति है, सिद्धियां हैं। तो आप सभी सभी मिलकर के संकल्प करेंगे, एक साथ बोलेंगे हमारे साथ, हमारे हर संकल्प में, सभी बोलेंगे हमारे हर संकल्प में सारा कल्प छिपा है,
सारा कल्प छिपा है।
अब तो समय भी,
अब तो समय
बहुत थोड़ा अल्प बचा है,
बहुत थोड़ा अल्प
करना है, जो भी कर ले, यह वक्त जा रहा है,
यह वक्त जा,
बहुत गई थोड़ी रही,
बहुत गई थोड़ी,
अब घर जाना है,
अब घर जाना,
यही हमारे पूर्वजों का संकल्प रहा है,
यही हमारे पूर्व,
यही हमारे पूर्वजों का संकल्प रहा है,
यही हमारे संकल्प रहा है।
लास्ट पीस है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है।
तो आप सभी ने बहुत अच्छे अपने अपने पॉइंट्स रखे और बहुत अच्छी तरह से अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचने का प्रयास किया। तो बाबा ने जो बातें मुरली में इन सभी वस्तुओं के लिए कहा है, तो एक बार क्विकली वो रिवाइज करेंगे। तो जैसे बेहद के सेवाधारी के लिए बाबा ने कहा कि बेहद के बाप उनसे बेहद के स्थान पर मिलते हैं, और जो भी बेहद के सेवाधारी हैं वो मतलब सारी हदों से पार होकर निरसंकल्प भाव से सेवा करते हैं। फिर फरिश्ता स्वरूप के लिए बाबा ने कहा कि सर्व हद के रिश्ते से जो परे है, जिसका बस एक बाप से रिश्ता है, कर्मातीत अवस्था वाला देही अभिमानी से फरिश्ता बनते हैं। फिर सिरताज जो था, ताज को बेचा, वो है बाप के सिरताज, तो उसको ऐसे बेच सकते थे कि बाबा ने कहा कि बच्चे तो ज्ञान सुनाने में भी बाबा से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉपियां भर रखी है सभी ने, तो वैसे इस तरीके से बाबा के वो सिरताज बनते हैं। फिर उड़ता पंछी के लिए बाबा ने कहा कि उपराम अवस्था वाले जो हैं, जो सभी हदों की दीवार को पार करने वाले हैं, और कर्म रूपी डाली के बंधन अर्थात पिंजरे से जो मुक्त हैं, और कमजोरी के पंखों वाले नहीं हैं। फिर कल्प वृक्ष के लिए बाबा ने कहा कि उसमें 5 प्रकार की सुंदर डालियां हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और डायमंड। और डायमंड के जो डाली पर बैठेंगे तो हीरे की डाली पर बैठकर कैसे बन जाएंगे, हीरा बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। और विश्व कल्याणकारी ग्लोब, वो माताओं के लिए जो बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी हैं, जगत कल्याणकारी हैं, शक्ति स्वरूप हैं, अनुभवी मूर्त है, जो कि हमने पहले भी कवर किया। ओके, ओम शांति।
होमवर्क आज का, तो भट्टी के कितने दिन बाकी है, 6 आज का मिला के, 5 ही दिन बाकी है बस। तो ये भट्टी का जो थीम गीत था, नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, इसका जो स्लो वर्शन था जो सुबह अभी बजा था, उसको आपको अपने ही स्वर में गाना है आज। एक काम ये है आज का, और दूसरा शास्त्रों में ऐसे कोई भी 3 शास्त्रों में हद से बेहद की ओर जाने वाली कौन सी बातें हैं, चाहे बाइबल है, उपनिषद है, गीता है जिसमें स्थित प्रज्ञ की चर्चा है, इस टाइप की, वो 3 कोई भी शास्त्रों से कुछ रेफरेंसेस निकालने हैं जिसमें बेहद की ओर जाने की बात लिखी हुई है। अच्छा, ओम शांति।
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हंसी का मेरे बिना मेरे तो ये जहां कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको परे में ही मैं हूँ सिवा मेरे अपने का कुछ नहीं है। ना दुख है ना सुख है नहीं शोक कुछ भी अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं है पिया कुछ नहीं है। सपना है सब जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ मौज और है आनंद मेरा है मस्ती ही मस्ती पिया कुछ नहीं है पिया कुछ नहीं।